एकात्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं, एक ऐसी गैलेक्सी में जहां कुछ भी हो सकता है, और हां, अक्सर होता भी है। हम बात कर रहे हैं डगलस एडम्स की कालजयी रचना द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी की। ये विज्ञान कथा तीखा व्यंग्य और आप कह सकते हैं गहरे दार्शनिक सवालों का एक अद्भुत मजेदार मिश्रण है।
बिल्कुल, और डगलस एडम्स सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो तो ब्रिटिश ह्यूमर की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम थे। कैम्ब्रिज से पढ़े थे, फुटलाइट्स कॉमेडी मंडली के मेंबर रहे।
हाँ, और मॉन्टी पाइथन से भी जुड़े थे ना?
जी हाँ, मॉन्टी पाइथन के साथ भी काम किया। उनकी अपनी शख्सियत भी बड़ी दिलचस्प थी, जैसे उन्हें टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था, शायद शुरुआती एप्पल यूजर्स में से थे वो।
अच्छा।
हाँ, और साथ ही वो मुखर नास्तिक थे, पर्यावरण के लिए भी काफी सोचते थे, और ये सारी बातें उनके लिखने में झलकती हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें इंसान कहाँ टिकता है, और इस सबके बीच जो अजीबोगरीब स्थितियां बनती हैं, उन पर उनकी नज़र बड़ी अनोखी थी, मज़ेदार पर सोचने पर मजबूर करने वाली।
सही कहा। और ये पूरा सफर, ये किताब असल में शुरू हुई थी 1978 में बीबीसी रेडियो 4 की एक सीरीज से।
हाँ, एक कॉमेडी सीरीज थी और वो इतनी हिट हुई,
जबरदस्त हिट हुई थी।
हाँ, कि उसी से फिर 1979 में ये नॉवल निकला, और फिर तो ये बढ़ता ही गया, पूरी सीरीज बन गई, टीवी शो, गेम्स, हॉलीवुड मूवी भी बनी। मतलब ये सिर्फ किताब नहीं रही, एक तरह का कल्चरल फिनोमिनॉन बन गई।
बिल्कुल, और उस दौर को भी देखें तो 70s और 80s का दशक, एक तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, स्पेस के बारे में नई नई बातें पता चल रही थी, वहीं ये एहसास भी था कि भाई ब्रह्मांड तो बहुत ही विशाल है, अजनबी है, शायद बेमतलब भी। एडम्स ने इसी कॉन्ट्रास्ट को पकड़ा, साइंस फिक्शन के गंभीर थीम को कॉमेडी के साथ ऐसे मिलाया कि एक नई चीज बन गई।
सही।
तो आज हम इसी नॉवल की कहानी, इसके यादगार किरदारों, इसके गहरे विषयों और एडम्स की उस खास स्टाइल पर ही बात करेंगे, वो स्टाइल जो आज भी लोगों को हंसाता है और सोचने पर मजबूर करता है।
तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के बिल्कुल बीच से। पृथ्वी पर आर्थर डेंट नाम का एक, कह सकते हैं, बिल्कुल आम अंग्रेज है, और वो परेशान है क्योंकि उसके घर पर बुलडोजर चलने वाला है।
क्यों? क्योंकि वहां से एक नया बाईपास निकलना है।
हाँ, मतलब एक बहुत ही निजी जमीनी किस्म की तबाही है उसके लिए,
घर जा रहा है उसका।
और यही एडम्स का कमाल दिखता है, कैसे वो इस छोटी सी पर्सनल तबाही को एक बहुत बड़ी, मतलब कॉस्मिक लेवल की तबाही के साथ रखते हैं।
हाँ बिल्कुल, आपने सामने, ये व्यंग्य की पहली परत है ना, नौकरशाही पर, चाहे वो लोकल हो या गैलेक्टिक।
बेकार एक्टर समझता था, पर फोर्ड असल में बेटलग्यूज ग्रह का एक एलियन रिसर्चर है।
अच्छा।
हाँ, वो पृथ्वी पर था द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी के लिए जानकारी जुटाने। ये एक बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक गाइड बुक है, और फोर्ड आते ही एक धमाका करता है कि भाई आर्थर के घर की छोड़ो, पूरी पृथ्वी ही बस कुछ मिनटों में खत्म होने वाली है।
और वजह?
एक वोगन कंस्ट्रक्टर फ्लीट। ये वोगन एक बहुत ही गुस्सैल और नियम कायदे वाले एलियन है, अपनी भयानक कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं।
हाँ, उनकी कविता तो खैर।
और वो वहां से एक नया हाइपरस्पेस बाईपास बनाने वाले हैं। प्लान बन गया, नोटिस कथित तौर पर दे दिया गया, अब तो पृथ्वी खत्म होगी ही। ये नौकरशाही की बेतुकी हद है, जहां नियम जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल वही लॉजिक जो आर्थर के घर के लिए था, बस स्केल बदल गया है। तो पृथ्वी तो खत्म हो जाती है, लेकिन फोर्ड आखिरी पलों में आर्थर को बचा लेता है। कैसे? उन्हीं वोगुन जहाजों में से एक पर हिचहाइकिंग करके,
लिफ्ट लेकर।
हाँ, लिफ्ट लेके। और यही हमें गाइड के दो सबसे मशहूर चीजें मिलती हैं, कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा, घबराए नहीं,
डोंट पैनिक,
जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली सलाह है।
बिल्कुल।
और दूसरा एक तौलिया। गाइड कहता है कि तौलिया किसी भी हिचहाइकर के लिए गैलेक्सी में सबसे जरूरी चीज है।
वो तौलिया महज एक चीज नहीं है, वो एडम्स की दुनिया में प्रैक्टिकलिटी, तैयारी और शायद थोड़ी सी मानसिक शांति का सिंबल बन जाता है। चलिए अब इस अजीब सफर के बाकी मुसाफिरों से भी मिलते हैं। आर्थर डेंट, जैसा हमने देखा, बिल्कुल आम आदमी है, इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा में बिना मर्जी के फंस गया है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? बस अपनी नॉर्मल जिंदगी और एक बढ़िया कप चाय। वो खोई हुई पृथ्वी का प्रतीक है।
उसके बिल्कुल उलट है फोर्ट प्रीफेक्ट। अनुभवी हिचहाइकर है, ज्यादा प्रैक्टिकल, थोड़ा सनकी भी। वो गैलेक्सी की इस अफरत तफरी में जीना सीख चुका है। वो आर्थर का गाइड है, पर उसकी सलाह भी उतनी अजीब होती है जितनी ये गैलेक्सी।
फिर है ज़ैफोर्ड बीबलब्रॉक्स, गैलेक्सी का एक्स प्रेसिडेंट, दो सिर तीन हाथ और ईगो शायद उससे भी ज्यादा।
हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से सेल्फ ऑब्सेस्ड, केओटिक, कुछ भी कर सकता है।
और है ट्रिलियन, उसका असली नाम है ट्रिशिया मैकमिलन, पृथ्वी की ही एक इंटेलिजेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। आर्थर से एक पार्टी में मिली थी लेकिन उसने ज़ैफोर्ड के साथ स्पेस में एडवेंचर चुना।
उसकी कहानी दिखाती है कि पृथ्वी के खत्म होने पर रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं। आर्थर शॉक में है, वो एडेप्ट कर रही है। और हाँ, मार्विन द पैरानॉइड एंड्रॉइड,
ओह मार्विन,
एक ऐसा रोबोट जिसके पास ग्रह के आकार का दिमाग है, मतलब इनफिनिट इंटेलिजेंस। लेकिन काम क्या दिया जाता है? दरवाजे खोलो, ये करो, वो करो। नतीजा, वो परमानेंटली गहरे डिप्रेशन और बोरियत में रहता है।
और उसके डायलॉग्स, वो तो एग्जिस्टेंस के खालीपन पर कमाल की कमेंट्री हैं।
बिल्कुल, तो ये जो किरदारों का जमावड़ा है, यही कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। एक अकेला इंसान बनाम ब्रह्मांड कि ये विशाल, उदासीन और अक्सर बेवकूफी भली व्यवस्था। कॉमेडी के पीछे वो गहरा सवाल है, क्या इस बेमतलब से दिखने वाले ब्रह्मांड में कोई मतलब खोजना पॉसिबल है?
या शायद जैसा एडम्स इशारा करते लगते हैं, मतलब की तलाश ही अपने आप में बेतुकी है।
हो सकता है। चलिए कहानी पर लौटते हैं। आर्थर और फोर्ड अब वॉगन जहाज पर हैं। वॉगन, जैसा बताया, बेरहम ब्यूरोक्रेट्स हैं। और उनकी कविता, उफ, उसे सुनना ही टॉर्चर है। कहते हैं ब्रह्मांड में तीसरी सबसे खराब कविता है।
तीसरी सबसे खराब? पहली दो कौन सी होंगी? सोचने वाली बात है।
हाँ, तो जब वॉगनों को इन मेहमानों का पता चलता है तो सजा के तौर पर पहले तो उन्हें अपनी कविता सुनाते हैं,
टॉर्चर,
और फिर उन्हें सीधे स्पेस के वैक्यूम में फेंक देते हैं।
मौत पक्की लग रही थी।
पर यहीं एडम्स का पसंदीदा हथियार काम आता है, इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस, मतलब जिसकी संभावना लगभग शून्य हो। मरने से ठीक एक सेकेंड पहले उन्हें एक दूसरा स्पेसशिप बचा लेता है। ये शिप है हार्ट ऑफ गोल्ड,
जिसे ज़ैफोर्ड बीबलब्रॉक्स ने अभी अभी चुराया है।
बिल्कुल, और ये कोई मामूली शिप नहीं है, ये चलता है इन्फिनिट इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव पर,
अनंत असंभवता ड्राइव।
हाँ, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सचमुच कुछ भी असंभव कर सकती है, जिससे नतीजे अक्सर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, इलॉजिकल और बहुत फनी होते हैं। ये सिर्फ ट्रैवल का तरीका नहीं, कहानी में केओस और सरप्राइज पैदा करने वाला इंजन है।
इसका एक नमूना तो तुरंत ही दिखता है ना, जब उनपे मिसाइलें दागी जाती हैं।
हाँ, दो न्यूक्लियर मिसाइलें आती हैं, आर्थर घबराकर इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव चालू कर देता है, और नतीजा, मिसाइलें बदल जाती हैं एक हैरान स्पर्म वेल और पेटूनिया के फूलों के गमले में।
एक वेल और एक गमला?
हाँ, वेल स्पेस में गिरते हुए कुछ पल जिंदगी के मतलब पर सोचती है, और गमला बस यही सोचता है, ओह नो, फिर से नहीं। ये एडम्स के फिलॉसफी और ह्यूमर का कमाल का मिक्स है, गंभीर सवालों को भी मजेदार बना देना।
इसी हार्ट ऑफ गोल्ड पर आर्थर की मुलाकात फिर से ट्रिलियन से होती है। पता चलता है कि जिस पार्टी में आर्थर ने उसे इम्प्रेस करने की नाकाम कोशिश की थी, वहीं से ट्रिलियन ज़ैफोर्ड के साथ निकल गई थी गैलेक्सी घूमने।
ये रीयूनियन कहानी में एक पर्सनल एंगल जोड़ता है, खोए हुए मौके, बदली हुई हकीकतें।
किरदारों के आपसी रिश्ते भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आर्थर और फोर्ड के बीच एक अजीब सी डिपेंडेंसी है। आर्थर को गैलेक्सी समझने के लिए फोर्ड चाहिए, और फोर्ड को शायद एक साथी मिल गया है।
या एक परमानेंट प्रोजेक्ट। आर्थर और ट्रिलियन का रिश्ता वो दिखाता है एक कॉमन पास्ट है, पर प्रेजेंट बिल्कुल अलग। ज़ैफोर्ड अपनी ही धुन में है, लेकिन उसके सफर के पीछे एक राज है। उसके अपने एक सिर के दिमाग में कुछ बदलाव किए गए हैं, और वो मैग्राथिया नाम के एक मिथिकल प्लैनेट को खोज रहा है।
हाँ, मैग्राथिया, ज़ैफोर्ड का असली मिशन यही है। मैग्राथिया एक लेजेंड बन चुका ग्रह है। कहते हैं कि कभी वहां के लोग इतने अमीर और एडवांस थे कि वो कस्टमर्स के लिए पूरे पूरे प्लैनेट डिजाइन करते थे, बनाते थे।
अच्छा, प्लैनेट फैक्ट्री।
हाँ, एक तरह से। अब माना जाता है कि वो ग्रह या तो खत्म हो गया है या कहीं खो गया है। ज़ैफोर्ड को किसी तरह उसके कोऑर्डिनेट्स मिले हैं और वो वहां पहुंचना चाहता है।
और मार्विन, वो अपने डिप्रेशन में डूबा है। उसकी इंटेलिजेंस और उसे मिले काम के बीच का जो गैप है, वो टेक्नोलॉजी, कॉन्शियसनेस और पर्पस पर एक कमेंट्री है। क्या इतनी काबिलियत होना बोझ बन जाता है अगर उसका कोई मतलब का यूज ना हो? मार्विन ये सवाल खड़ा करता है।
तो हार्ट ऑफ गोल्ड मैग्राथिया के पुराने धुंधले कोऑर्डिनेट्स का पीछा करते हुए आखिरकार उस ग्रह तक पहुंच जाता है, लेकिन ग्रह बिल्कुल शांत, मरा हुआ लगता है। उन्हें एक ऑटोमेटेड मैसेज मिलता है, तुरंत वापस जाओ। जाहिर है ज़ाफ़ोर नहीं मानता।
नतीजा, ग्रह का पुराना डिफेंस सिस्टम जाग जाता है और उन पर दो न्यूक्लियर मिसाइलें दाग देता है।
फिर से?
हाँ, फिर से वही सिचुएशन। आर्थर फिर से इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव चलाता है और मिसाइलें फिर बदल जाती हैं वही हैरान स्पर्म व्हेल और पिटूनिया का गमला।
ना, एडम्स यहाँ रिपीटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमर के लिए और शायद ये भी दिखाने के लिए कि कॉस्मिक लेवल पर चीजें कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं।
वो वेल का छोटा सा मोनोलॉग भी है ना, है ना? गिरते हुए अचानक उसे होश आता है, वो जिंदगी के मतलब पर सोचती है इससे पहले कि वो ग्रह से टकरा जाए। ये एडम्स का तरीका है सबसे अजीब सिचुएशन में भी फिलोसफिकल बातें डाल देना।
वे ग्रह पर उतरते हैं, उसके अंदर जाते हैं। इसी बीच आर्थर बाकी लोगों से बिछड़ जाता है और उसकी मुलाकात होती है स्लॉटी बार्टफास्ट से।
स्लॉटी बार्टफास्ट, क्या नाम है?
हाँ, वो एक बुजुर्ग है जो खुद को प्लैनेट डिजाइनर बताता है। कहता है उसने कभी नॉर्वे के खूबसूरत फ्योर्ड्स डिजाइन किए थे, अवार्ड भी जीता था उसके लिए।
अच्छा,
और स्लॉटी बार्टफास्ट ही आर्थर पर मैग्राथिया का और उससे भी बड़ा पृथ्वी का असली राज खोलता है। ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है।
हाँ, ये तो मतलब आइकॉनिक बन गया है। स्लॉटी बार्टफास्ट बताता है कि मैग्राथिया मरा नहीं है, बस एक लंबी गैलेक्टिक मंदी के कारण बंद पड़ा है, कस्टमर्स का इंतजार कर रहा है। लेकिन असली बम तो पृथ्वी के बारे में फूटता है। आर्थर, जिसे अपना घर समझता था, वो असल में कोई मामूली ग्रह था ही नहीं।
तो क्या था?
वो एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर था।
सुपर कंप्यूटर? किस लिए?
उसे डिजाइन किया था अल्ट्रा इंटेलिजेंट पैन डायमेंशनल प्राणियों ने, जो मजे की बात है हमारे डायमेंशन में साधारण सफेद चूहों जैसे दिखते हैं।
चूहे?
हाँ, चूहे। और उनका मकसद था जीवन, ब्रह्मांड और सब कुछ के परम प्रश्न, द अल्टीमेट क्वेश्चन का पता लगाना।
परम प्रश्न मतलब इसका कोई उत्तर भी था पहले?
हाँ, कहानी ये है कि इन्हीं चूहों जैसे प्राणियों ने पहले डीप थॉट नाम का एक और भी बड़ा कंप्यूटर बनाया था। उससे उन्होंने पूछा था जीवन, ब्रह्मांड और सब कुछ का परम उत्तर, द अल्टीमेट आंसर। डीप थॉट ने 7.5 मिलियन साल कैलकुलेट किया और जवाब दिया 42।
42?
बस
इसका क्या मतलब हुआ?
यही तो पेच है, किसी को मतलब समझ नहीं आया। डीप थॉट ने कहा, भाई उत्तर तो दे दिया, पर प्रॉब्लम ये कि किसी को ठीक से पता ही नहीं कि परम प्रश्न क्या है जिसका ये जवाब है। तो परम प्रश्न कैलकुलेट करने के लिए एक और भी बड़े कंप्यूटर की जरूरत थी, और वो कंप्यूटर था ग्रह पृथ्वी।
तो पृथ्वी का पूरा इतिहास, इंसान, सब कुछ उस परम प्रश्न को ढूंढने के एक लंबे प्रोग्राम का हिस्सा था। या ये तो दिमाग घूम गया।
और आयरनी देखिए, पृथ्वी का वो 10 मिलियन साल का प्रोग्राम पूरा होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे जब वॉगनो ने उसे एक मामूली बाईपास के लिए उड़ा दिया।
ओह, मतलब ब्रह्मांडीय पैमाने पर लाल फीताशाही की जीत, ज्ञान की खोज पर एक दुखद या शायद मजेदार अंत।
ये जो खुलासा है, ये नॉवल के कई मेन थीम्स को एक साथ ले आता है। सबसे पहले तो अस्तित्व का बेतुकापन। परम उत्तर 42 का कोई मतलब नहीं। शायद एडम्स कह रहे हैं कि जिंदगी के बड़े सवालों के कोई आसान जवाब होते ही नहीं।
या शायद जैसा स्लॉटी बार्टफास्ट कहता है, सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है जवाब नहीं। ये पूरी तलाशी शायद एक कॉस्मिक जोक है और उसे सीरियसली लेना ही बेवकूफी है।
और नौकरशाही की बेवकूफी तो साफ है। वोगनो का नियमों का पालन इतना अंधा है कि वे एक पूरे ग्रह को, जो शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था, मिटा देते हैं। ये आज की दुनिया पर भी कमेंट है।
साथ ही ये कहानी हमें यूनिवर्स के स्केल में इंसान कितने छोटे हैं ये एहसास कराती है।
हमारी चिंताएं, हमारी सभ्यता कितनी मामूली हैं। लेकिन इसमें एक अजीब सा सुकून भी हो सकता है। अगर हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो शायद अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये पर्सपेक्टिव बदल देता है। और ज्ञान बनाम बुद्धिमत्ता का सवाल भी है। डीप थॉट के पास जवाब है, गाइड के पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, माविन के पास जबरदस्त दिमाग है, पर क्या इनमें से कोई वाकई समझदार या खुश है?
शायद असली समझदारी, जैसा फोर्ड या आर्थर धीरे धीरे सीखते हैं, वो अनिश्चितता और केओस को ह्यूमर, धैर्य और हाँ, एक तौलिये के साथ अपनाने में है।
और घर की तलाश, आर्थर जो बार बार चाय खोजता है, वो सिर्फ एक ड्रिंक की तलब नहीं, वो उस खोई हुई नॉर्मैलिटी, उस अपनेपन की तलाश है जो पृथ्वी के साथ चला गया। कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे डिस्प्लेसमेंट के बाद नए अनजाने रिश्ते बनते हैं और वही एक तरह का नया घर बन जाता है।
टेक्नोलॉजी और एआई पर भी एडम्स की सोच गौर करने लायक है।
मार्विन का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, उसकी इतनी क्षमता और उसका इतना बोरिंग काम, ये आज एआई के जमाने में और भी रेलेवेंट लगता है।
हाँ, और गाइडबुक खुद जो अक्सर गलत, पुरानी या पूरी तरह मनगढ़ंत जानकारी देती है। इन्फॉर्मेशन एज में ज्ञान कितना भरोसेमंद है, इस पर एक फनी कॉमेंट्री है वो। परम प्रश्न जानने के लिए मरे जा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने डायमेंशन में इसे लेकर बड़ी बहसें चल रही हैं, करियर दांव पर लगे हैं।
और उन्हें लगता है कि आर्थर, जो पृथ्वी के खत्म होने से ठीक पहले वहां था, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सवाल छुपा हो सकता है।
हाँ, तो वे एक सीधा सा ऑफर रखते हैं, वे आर्थर का दिमाग खरीदना चाहते हैं, मतलब काट कर निकालना।
ये तो स्थिति और भी अजीब हो गई। यूनिवर्स के सबसे बड़े सवाल के लिए एक आम इंसान के दिमाग की जरूरत।
हाँ, और इससे पहले कि चूहे कुछ कर पाते, वहां गैलेक्टिक पुलिस आ जाती है। वो ज़ाफ़ोर्ड का पीछा कर रहे थे हार्ट ऑफ गोल्ड चुराने के लिए। अब सब तरफ अफरा तफरी, गोलीबारी। लेकिन इस केओस का समाधान भी उतना ही एडम स्टाइल में होता है।
वो कैसे? क्या मार्विन कुछ करता है?
बिल्कुल, मार्विन अपने उसी डिप्रेशन वाले अंदाज में पुलिस शिप के मेन कंप्यूटर से बात करना शुरू कर देता है। वो उसके साथ यूनिवर्स की मीनिंगलेसनेस, जिंदगी के दुख, अपने होने की बोरियत पर इतनी लंबी, गहरी और निराशाजनक फिलोसॉफिकल बात करता है
कि पुलिस का कंप्यूटर डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेता है।
हाँ, पूरा शिप बंद पड़ जाता है।
कमाल है एक्शन सीक्वेंस का अंत, एक रोबोट द्वारा दूसरे कंप्यूटर को डिप्रेशन में डालकर। ये सिर्फ डगलस एडम्स ही सोच सकते थे। ये दिखाता है कि कैसे वो जॉनर के नियमों को तोड़ते हैं और उन्हें अपने ह्यूमर और फिलॉसफी से भर देते हैं।
इसके बाद हमारे हीरो किसी तरह बचकर वापस हार्ट ऑफ गोल्ड में पहुंचते हैं। वे अब कानून से भाग रहे हैं, उनका फ्यूचर अनसर्टेन है, मैकेथिया का राज खुल गया, 42 पता है, पर परम प्रश्न अभी भी नहीं पता। अब अगला कदम क्या?
जाहिर है, इतनी भागदौड़ और एग्जिस्टेंशियल सवालों के बाद उन्हें जोर की भूख लगी है। वे खाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने का फैसला करते हैं,
और ज़ाफ़ोर्ड एक बढ़िया जगह सजेस्ट करता है, रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स,
ब्रह्मांड के अंत में बना रेस्टोरेंट। और यहीं पर ये नॉवल खत्म होता है, एक नए एडवेंचर की शुरुआत पर जो अगले नॉवल का बेस बनता है।
ये जो खुला अंत है और कहानी कहने का एडम्स का तरीका, ये भी बहुत खास है। वो एक थर्ड पर्सन नैरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो खुद एक कैरेक्टर जैसा लगता है, फनी, सार्केस्टिक, और अक्सर बीच में कूदकर अपने कमेंट्स या गाइड से कोटेशन देता है।
हाँ, और वो जो बीच बीच में गाइड की एंट्रीज आती हैं, उनके जरिए वो इस अजीब यूनिवर्स के नियम, प्रजातियां, इतिहास बताते हैं। वो मेन कहानी से हटकर होती हैं, पर दुनिया को और मजेदार बनाती हैं। डोंट पैनिक जैसे वाक्यों में गहरी आयरनी है। नौकरशाही, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, साइंस, सब पर सटायर है।
और भाषा का खेल, अंडरस्टेटमेंट का कमाल का इस्तेमाल, जैसे पृथ्वी के खत्म होने को बस एक प्लानिंग प्रॉब्लम बताना, और वो अजीब यादगार सिमिली और मेटाफर्स, जैसे वो फेमस लाइन, जहाज आसमान में ठीक उसी तरह लटके थे जैसे ईटे नहीं लटकती।
हाँ, द शिप्स हंग इन द स्काई इन मच द सेम वे दैट ब्रिक्स डोंट। ये लॉजिकली तो नॉनसेंसिकल है, पर उस सीन की अजीबियत को पकड़ लेता है।
इस सब का पढ़ने वाले पर क्या असर होता है? आप हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, लेकिन हंसी के साथ एक हल्की सी बेचैनी, एक सवाल भी उठता है। ये किताब आपको यूनिवर्स में अपनी जगह, ज्ञान की हदों और शायद जिंदगी की इस बेतों की खूबसूरती पर सोचने को मजबूर करती है।
ये सिखाती है कि अनिश्चितता शायद डरावनी ना हो, रोमांचक हो सकती है, और मुश्किल हालात का सामना ह्यूमर और एक तौले से किया जा सकता है।
तो अंत में शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि
ब्रह्मांड की इस अफरातफरी और अनसुलझे सवालों के बीच शायद सबसे मतलब के जवाब ह्यूमर, दोस्ती और एक भरोसेमंद तौलिये में ही छुपे हों।
या फिर बड़े सवालों के जवाब खोजने की कोशिश छोड़कर बस सफर का मजा लेना और एक अच्छी चाय पीना ही सबसे बड़ी समझदारी हो।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।